पिया जग गए हैं अकेले, केनू संग खेलू बोली। पिया जग गए हैं अकेले, केनू संग खेलू बोली। पिया जग गए
ओम शांति। आ रहे मैंने और आ रहे अभी एक गीत सुना। कौन सा गीत था ये? ये भक्ति का गीत था, मीरा का लिखा हुआ। केनु संग खेलु होली, पिया त्यज हूं गए अकेली। मीरा लिख रही है, मीरा गा रही है कि हे गिरधर अब किसके साथ मैं होली खेलूं। पिया त्यज हूं गए अकेली, पिया मुझे छोड़ कर गए हैं। भोजन भवन भलो नहीं लागे, इस संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी प्रभु प्रेम की दीवानी, ऐसी वैराग से परिपूर्ण आत्मा, भक्ति काल में कभी ऐसी आत्मा हुई है जिसका घर राजसी घर था, राज परिवार में उसका जन्म हुआ, उस राजस्थान में जहां कभी स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया सदियों से, परंतु ये प्रभु प्रेम की दीवानी घर से बाहर निकली, मंदिरों में सत्संगों में गई और जब प्रेम का आवेग और बढ़ा तो सड़कों पर आ गई। लोग कहे मीरा हुई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे, परंतु वो मगन है। दिखाया है उसके जीवन में जब वो छोटी सी होती है, सबने सुना है कोई साधु उसके घर आता है जिसके पास एक बहुत ही सुंदर एक दिव्य प्रतिमा होती है श्री कृष्ण की। जब वो साधु से उसे मांगती है तो साधु देने से मना कर देता है, पर दिखाया है उस साधु के स्वप्न में जैसे भगवान आकर कहते हैं कि वो प्रतिमा उसी को दे दो जिसकी वो है, और वापस वो साधु आता है और मीरा को प्रतिमा भेंट कर जाता है। दिखाया है आगे जब कभी शादी हो रही होती है घर में किसी की तो वो पूछती है वो कौन है, तो उसे कहा जाता है वो दूल्हा कौन है, वो पूछती है मेरा दूल्हा कौन है, तो उसकी माँ उससे कह देती है ये जो तेरा गुड्डा है, ये जो मूर्ति है, यही तेरा दूल्हा है। बाल मन पर हुआ ये प्रभाव इतना दूरगामी हो सकता था किसी ने सोचा नहीं कि उसने उस पुतले को, उस प्रतिमा को, उस गुड्डे को ही अपना जीवन साथी समझ लिया और अपना संपूर्ण जीवन उस गोपाल को अर्पण कर दिया। उसके जीवन में और एक घटना है, दिखाया है पांच मृत्यु जिस वजह से उसके संसार से विरक्ति हो जाती है। जिन लोगों ने मीरा की जीवन कहानी लिखी है वो कहते हैं जब वो बहुत छोटी थी उसकी माँ चल बसी, उसके बाबा ने उसे पाला, ग्रैंडफादर, फिर उसकी शादी हुई, शादी के कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसे संभाला, उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसके ससुर ने उसे संभाला, पर जीवन की ये जो घटनाएं घटी जीवन में, इतिहासकारों ने लिखा है दुर्भाग्य से, परंतु शायद यही कारण थे जिस वजह से जो उसका संसार में जो आसक्ति थी वो पूर्ण तरह पूर्ण रीति से समाप्त हो गई। जो प्रेम संसार की ओर बह रहा था समाप्त हो गया और सारा के सारा प्रेम कृष्ण की ओर दौड़ने लगा, ना तो उसकी माँ रही, ना उसके पिता, ना उसके बाबा, ना उसका पति, ना ही उसकी ससुर। और उसके बाद जो कोई व्यक्ति थे उन सब ने उसकी बहुत निंदा की, उसकी बहुत ग्लानी की, उसे बहुत सताया। उसके पदों में बार बार एक शब्द आता है, राणा, उसका देवर विक्रम सिंह। कभी सांपों की पिटारी भेजी तो कभी कांटों की सैया, कभी विष भेजा तो कभी कुछ। हूँ तो हिम्मत की हासी गीत में था, राणा विष को प्यालो भेजो। वैसे तो हिम्मत मुझ में बहुत कम है, परंतु वो साथ है। इन सभी चीजों ने उसे मृत्यु और विरोध उसके मन में एक परम तीव्र प्यास उत्पन्न कर दी, प्रभु प्रेम की, ईश्वरीय प्रेम की, वैराग की। उसका जीवन अगर देखा जाए, इतनी छोटी उम्र में ये सारी घटनाएं घटी और वो परम वैराग को उपलब्ध हुई। जो उसके आसपास के लोग थे वो उसे समझ नहीं पाए, शायद उसे समझने के लिए इतना तीव्र परमात्मा प्रेम चाहिए था जो कि वहां के लोगों में नहीं था। दूर दूर से उसके तरफ लोग आकर्षित हुए, सारे भारत भर से लोग उससे मिलने और उसे देखने आने लगे, परंतु उसके घर वाले जो थे वो उसे समझ नहीं पाए, उसकी सास उसे समझ नहीं पाई, ना ही उसका देवर। कहीं तो उसके देवर का अहंकार भी था, उसकी प्रतिष्ठा का भी संबंध था, क्योंकि इसकी ख्याति बढ़ती गई। दिखाया है मीरा ने एक खत लिखा था तुलसीदास को कि मैं क्या करूं, एक तरफ परमात्मा प्रेम, एक तरफ ईश्वरीय प्रेम, यहां बीच में आ जा सकते हैं, यहां बीच में आ जाइए। इधर आ जाइए, ये लाइन पूरी इधर आ जाइए, बीच। मीरा ने लिखा वो खत, ऐतिहासिक पत्र है वो, जिसमें वो लिखती है मैं क्या करूं, एक तरफ प्रभु प्रेम मुझे खींच रहा है, एक तरफ वैराग है संसार से, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता इस संसार का। वो महलों में पलने वाली रास्ते पर आ गई, लोक लाज खोई रे, कुछ उसे भान नहीं। और दूसरी तरफ यह विरोध, यह प्रताड़ना, यह सताना। वो लिखती है मैं क्या करूं, तुलसीदास का जो खत था, जो उत्तर दिया तुलसीदास ने, बहुत सुंदर उत्तर दिया था। आप सभी इस उत्तर को ध्यान रखो, याद रखो, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। इतना सुंदर ये उत्तर तुलसीदास ने मीरा को दिया था। तुलसीदास ने लिखा था कि यदि परमात्म प्रेम के मार्ग पर कोई भी आ जाए, उसको वहां से हटा दो। उसने उदाहरण दिया था, पहला उदाहरण प्रह्लाद का। उसके पिता ही उसके मार्ग में आ गए, परंतु प्रह्लाद ने अपने पिता की परवाह नहीं की, भक्ति करता रहा पिता। दूसरा उदाहरण दिया भरत का। उसकी मां ही वजह से उसके मार्ग के बीच में आ गई। भरत ने अपनी मां को हटा दिया। तीसरा, राजा बलि वामन अवतार। उसका गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि ये जो बालक है कोई साधारण बालक नहीं है, ये जो बुटुक अवतार है, ये जो वामन अवतार है, ये विष्णु है, इसको भूमि दान में मत देना, पछताओगे। परंतु उसने नहीं सुना अपने गुरु का। भाई विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ दिया। जो जो इस मार्ग में, तुलसीदास ने लिखा, यदि तुम्हारे मार्ग में, क्योंकि उसका प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था, प्रश्न करने वाली भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसका झूठा वैराग नहीं था, ना ही झूठा परमात्मा प्रेम था, वो सच्चे प्रेम था, वो जो प्यास थी मीरा की, कौन उस प्रश्न का उत्तर देता? ऐसा उत्तर तुलसीदास ने दिया, चाहे भाई, चाहे पिता, चाहे मां, चाहे गुरु, कोई भी आ जाए इस मार्ग पर, उसकी परवाह नहीं करो। बाइबल में एक जगह बहुत सुंदर महावाक्य लिखा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक मां बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। ही हु लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक भाई या बहन, बेटा या बेटी से मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। बाइबल में और एक जगह लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में, आई थाई लॉर्ड गॉड आई एम अ जेलस गॉड। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा पिता, मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं, मेरे अतिरिक्त किसी और से प्यार मत करना। आई एम अ जेलस गॉड, मेरे अतिरिक्त किसी और से प्यार मत करना। एक जगह और लिखा है, डू नॉट थिंक दैट आई हैव ब्रॉट पीस अन टू दिस अर्थ। नो, आई हैव नॉट ब्रॉट पीस, बट आई हैव कम विथ स्वॉर्ड इन माई हैंड। वो लिखता है कि ये मत समझना मैं शांति का संदेश लेकर आया, शांति नहीं, मैं तलवार लेकर आया हूं तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। जिस जिस बंधनों में तुम फंसे हो वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए मैं आया हूं। माया के जाल से सर्वात्माओं को मुक्त करना है आज के वरदान की अंतिम लाइन। निर्बंधन, एक बाप के सिवा और कोई भी याद न आए, देह भी नहीं, अगर देह आ गया तो उसके पीछे पीछे सब आ जाएगा। आए थाय लॉर्ड एम अ जेलस गॉड। एक अव्यक्त वाणी चली थी कुछ मास पहले, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जिसमें बाबा ने कहा है, जब बाप देखते हैं कि बच्चे बाप का हाथ छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं तो बाबा को यह अच्छा नहीं लगता। तो मीरा की जो अवस्था थी प्रभु प्रेम की, उसके जीवन में जो वैराग था, ऐसा वैराग, ऐसी प्रभु प्रेम की दीवानी आत्मा, क्या हमारे जीवन में ऐसा ऐश्वर्य प्रेम है? क्या हमारे जीवन में ऐसा वैराग है? क्या हमारे जीवन में ऐसी पवित्रता की शक्ति है, ऐसी अनटच्ड पवित्रता? इस संसार का सबसे बड़ा टाइटल जो है वो है ब्रह्मा कुमारी बनना। इससे ऊंचा और कोई टाइटल नहीं। मुझे याद आ रहा है दादी प्रकाशमणि जीवन के जीवन का एक प्रसंग, जिसमें दादी को राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। तो दादी ने एक दिन वो पहन लिया, वो होता है ना उनका ऐसा पहनने का, तो दादी बहुत खुश थी। बाबा आए थे ओम शांति भवन में और दादी ने कहा, देखो मुझे ये मिला है डॉक्टरेट की डिग्री। दादी खुश थी थोड़ी। बाबा ने कहा, बच्ची क्या ब्रह्मा कुमारी से बड़ी कोई डिग्री है? दादी ने जाकर उसे निकाल दिया। ऐसा टाइटल, लकब जिसको बाबा कहते हैं, और इस संसार में कोई नहीं। इतनी ऊंची डिग्री इस संसार की और कोई नहीं। जगदीश भाई एक बहुत सुंदर बात सुनाते हैं, हमेशा सुनाते थे, उस कन्या की कहानी। कुआ है, वो पानी भर रही है। एक युवक वहां आता है और पूछता है कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। वो कन्या कहती है, पानी तो दूंगी पर एक शर्त है, अंग से अंग न लगे। ये वचन दो तो ही पानी दूंगी, अंग से अंग न लगे। वो कहता है, ठीक है, वचन दिया। और वो उसे अपने घाघर से पानी पिलाती है। बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है, पर उसे भी नहीं पता रहता कि किसके साथ मेरी शादी हो रही है, और उस कन्या को भी नहीं पता कि उसके साथ मेरी शादी हो रही है। आपसी घर के संबंधों के अनुसार उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो जब एक दूसरे को देखते हैं, वो कन्या कहती है, अपनी कसम याद रखना, अंग से अंग न लगे। वचन तुमने दिया था तब, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी। अर्थात ब्रह्मा कुमारी माया और मायावी मनुष्य अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 81 की मुरली है एक, माया और मायावी मनुष्य टीचर से मुलाकात, माया और मायावी मनुष्य तुम्हें टच न करे, ऐसी अस्पर्शित पवित्रता अर्थात ब्रह्मा कुमारी जीवन। यहां पर बहुत सारी कन्याएं बैठी है, पर हम यह नहीं सोचेंगे कि ये कन्याएं हैं। हम इन्हें होवनहार ब्रह्मा कुमारी रूप में देखते हैं, बाबा के राइट हैंड के रूप में देखते हैं और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कभी बाबा ने कहा है, वाह रे टीचर। एक बार बाबा ने टीचर्स को उठाया था और कहा था, अरे वाह। डायमंड हॉल में बाबा ने टीचर्स को उठाया था और कहा था, अरे वाह, भगवान के राइट हैंड वह कार्य कर रहे हैं जो उसका है, वह कार्य कर रहे हैं जिसके लिए वो आया है, जिन्होंने अपना जीवन स्वाहा कर दिया है, उनसे बड़ा इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। क्या सभी को ऐसा नशा है कुमारियों को? बहनों को नहीं, कुमारियों को। है या नहीं है? है क्या? कोई आवाज ही नहीं। कुछ तो जवाब दो। नशा है कि अभी संदिग्ध है, अभी डाउट है, अभी पता नहीं हाँ या ना, सोच रहे हैं इधर पैर रखूं या उधर पैर रखूं, इस नाव में भी है उस नाव में भी है, क्या करूं? है या नहीं है? है? ऐसा नशा है आज की मुरली में एक प्रश्न है, ऐसा रूहानी नशा है, मैं कौन? मुरली में प्रश्न आया है, ऐसा रूहानी नशा इमर्ज्ड रूप में रहे, मैं कौन? हम बात कर रहे थे मीरा की, दो बातें, प्रभु प्रेम और वैराग। ऐसा प्रभु प्रेम हो, ऐसा प्रभु प्रेम, इतना भरना है इस हृदय को ईश्वरीय प्रेम से कि संसार का कोई पुरुष कोई मनुष्य वहां उस हृदय में आ ना सके, इतना ईश्वरीय प्रेम से भरना है अपने हृदय को। और दूसरा है इतना वैराग। तो मुख्य रूप से आज की जो चर्चा है हम वैराग पर करेंगे। यहां जो बातें आप सुनेंगे शायद थोड़ा सा हृदय विदीर्ण होगा, इसके लिए पहले ही हम माफी मांग रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको लगे शायद नहीं सुनानी चाहिए, परंतु ये नहीं सोचो कि कोई भाई सुना रहा है, एक आत्मा सुना रही है। जो वाक्य सुनेंगे वो इस भाव से ना सुनो कि किसी पुरुष से आ रहे हैं। और यदि अच्छे ना लगे तो माफ कर देना। तो वैराग की चर्चा करेंगे, ऐसी 12 बातें हम आपको बताएंगे जिनसे हमें इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में वैराग हो। और जब तक ये वैराग नहीं, मीरा जैसी वो अवस्था नहीं हो सकती, ऐसी प्रेम में मगन अवस्था जो हृदय संसार में अटका हुआ है वो परमात्मा से कैसे प्रेम करेगा? जब तक वो विरक्ति नहीं आ जाती, जब तक वो प्रेम पूर्णतः एक प्रभु पर उंडेल नहीं दिया जाता, तब तक इस जीवन में वो दिव्यता वो पवित्रता भी नहीं आ सकती, वो आनंद भी नहीं आ सकता। जीवन ऐसा ही त्रिशंकु की तरह बीच में अधर में लटका रहेगा, ना उधर ना इधर, ना माया मिली ना राम, दुविधा में ऐसे फंसे ये अवस्था हो जाती है। वो अवस्था ना हो, इसलिए जो बातें हम सुनाएंगे आपको वो केवल आज के लिए नहीं परंतु संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो एक बार सुनने के लिए नहीं है, बार बार चिंतन मनन करने के लिए मंथनीय और मननीय वैसी बातें हैं। वो कौन सी बातें हैं जिससे हमें वैराग हो? सबसे पहली व्यक्ति, सबसे पहली बात व्यक्ति, मनुष्य, देहधारी, मेल, ह्यूमन बीइंग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, एक किताब लिखी है जिसका नाम है शोशकीर कविता। बंगाली में लिखा हुआ उपन्यास है, उसका हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे द लास्ट पोएम, अंतिम कविता। उसमें वर्णन है एक स्त्री का जो राजकुमारी है, बहुत संपन्न है। उसका प्यार है एक युवक से, एक कुमार से। उस युवक का भी उससे बहुत प्यार है, दोनों का ही एक दूसरे से बहुत स्नेह है। वो गरीब है, वो दोनों ही शादी करना चाहते हैं, शादी दोनों ही करना चाहते हैं, परंतु वो कुमारी, वो राजकुमारी एक शर्त रखती है। वो कहती है शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, परंतु एक शर्त है। कौन सी शर्त? शादी के बाद तुम उधर रहोगे, मैं इधर, बीच में एक झील होगी। वो कहता है ऐसी कैसी शादी है, शादी कर रहे हैं और हम साथ नहीं रहेंगे? वो कहते बस यही मेरी शर्त है, वो जो झील दिख रही है उस और जो महल है वो तुम्हारा होगा, और ये जो महल है ये मेरा होगा। हम कभी आपस में अगर मिले तो कोई प्लानिंग के साथ नहीं मिलेंगे, अचानक मिल लेंगे। आप उधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रही हूं, आप उधर से नौका विहार कर रहे हो, मैं इधर से नौका विहार कर रही हूं। मिल लिए तो मिल लिए, नहीं मिले तो नहीं मिले। वो कहता है ये भी कोई शादी है? ऐसी शादी ना कभी सुनी ना कभी देखी, तो शादी करने का मतलब ही क्या है? वो कहता है देख लो, तुम्हें स्वीकार है तो करो, नहीं तो नहीं करो। हां, पर यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सारी उम्र भर कुंवारी रहूंगी तुम्हारी याद में, और किसी से शादी नहीं करूंगी। अब सोच लो क्या करना है। वो कहता है ऐसा क्यों, ये भी कोई शर्त है? वो कहती है यही शर्त है, क्योंकि जैसे ही दो व्यक्ति समीप आते हैं और संबंध बढ़ते हैं, वो फैमिलियरिटी, घनिष्ठता बढ़ती है, तो दोनों का आपस में प्यार कम हो जाता है। हम रहेंगे तो साथ, परंतु अलग अलग, ताकि वो प्रेम का संबंध हमेशा बना रहे। हमारा जो प्रेम है आपके प्रति और आपका जो प्रेम है हमारे प्रति, ये कभी कम ना हो। हो सकता है हम अगर समीप आ गए तो एक दूसरे की कमी देखने में आएगी। जो ज्यादा समीप आ जाते हैं फैमिलियरिटी में, इसके लिए वहां क्या होता है, एक दो के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी संघर्ष, मानसिक संघर्ष पैदा हो जाता है। इसके लिए इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में जो भी हमारे आसपास है वो उस ओर, हम इस ओर, बीच में झील। जो हमारे आसपास रहते हैं वो सब उस ओर, हम इस ओर, बीच में झील। कभी मिल लिए तो मिल लिए, हेलो हाय ओम शांति, बात हो गई पूरा। बाद में वापस कुछ संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो घनिष्ठता को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उस फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में कहावत है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितनी घनिष्ठता होगी संबंधों में, उसी से घृणा का जन्म होगा, क्योंकि ईर्ष्या होगी। फिर वो चाहेगा कि ये केवल मेरे से ही बात करे, मेरे से ही प्यार करे, मेरे पर ही अटेंशन दे, मेरी ही केयर करे। अगर उस व्यक्ति पर दूसरा कोई अधिकार जमाता है तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और ईर्ष्या का कीड़ा ऐसा है कि एक बार आ गया शक, किसी पत्नी को शक हो जाए कि मेरे पति का कुछ चल रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, कितने भी सबूत पेश करो, वो जाने वाला नहीं है, ऐसा वो कीड़ा है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो हम जहां भी है, चाहे अगर हम सेंटर पर रहते हैं, जितने स्टूडेंट्स यहां आते हैं, प्रेम से व्यवहार करेंगे, उनको मदद करेंगे, ज्ञान योग से उनकी पालना करेंगे, परंतु बीच में झील हो, वो उधर हम इधर, काम हो गया, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मिल लिए तो मिल लिए, नौका विहार करते करते, तुम्हारा महल उधर हमारा महल इधर। संबंध यदि बढ़ाए तो वहां पर केवल ईर्ष्या, घृणा, द्वेष नहीं, परंतु काम भी उत्पन्न हो सकता है। सुबह या कल कुमारों की क्लास में कहा था, दोष ना तो स्त्री का है और ना ही पुरुष का, दोष उम्र का है। इस देह में बहते हुए हार्मोन्स जो आकर्षण पैदा करते हैं और वहां से इच्छा, जब इच्छा तीव्र होती है उसे कामना कहते हैं, जब कामना तीव्र होती है उसे वासना कहा जाता है। इच्छा से वासना की यात्रा बहुत आसानी से तय हो जाती है। इसके लिए यहां तक कि जो हमारे आसपास भी है, बीच में क्या हो, झील, झील का नाम क्या है बाबा? व्यक्ति। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसकी आध्यात्मिक प्यास। संसार में दो व्यक्ति एकत्र आते हैं, सोचते हैं एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, परंतु उनकी स्थिति उसी दो भिकमंगों की तरह है जो सोचते एक दूसरे को संपन्न बनाएंगे। संसार उसे विवाह कहता है। पूछो किसी को भी, क्या पाया, समझ पाए एक दूसरे को? 50 साल हो गए, अब तक नहीं समझ पाए क्या है। ना तो उस संबंध को समझ पाए, ना एक दूसरे को समझ पाए। अब भी वही द्वंद्व है अंदर। ऊपर से सब ठीक दिख रहा है, ऊपर से बहुत खुशियां दिख रही है, ऊपर से शांति का वातावरण है, अंदर द्वंद्व है। स्मृतियां है विकारों की। हो सकता है ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु स्मृतियों को भुलाना इतना आसान है? भोजन की स्मृतियां भुलाई जा सकती है, स्वादिष्ट भोजन कभी खाते थे उसे भुलाया जा सकता है, परंतु विकार की जो स्मृतियां होती है बहुत गहरे तल पर अंकित होती है, अवचेतन मन पर। कोई कितना भी कहे हम बाल ब्रह्मचारी है या ये है या वो है और साथ साथ रहते हैं, ये मार्ग इतना आसान नहीं है। घनघोर तपस्या की आवश्यकता है। पवित्रता की साधना कोई सादी साधना नहीं है। वो ऋषि मुनि कंदमूल फल खाने वाले, वहां उन्हें अप्सराएं तंग करती थी जंगलों में। कहां से आती थी वो अप्सराएं? उन्हीं के मन से, उन्हीं के मन का प्रक्षेपण था वो। सुख सुविधा में जीने वाला व्यक्ति कैसे ब्रह्मचर्य की साधना कर सकेगा? वो ब्रह्मा जैसे त्याग और तपस्या की वहां आवश्यकता है। तो पहला वैराग किससे? व्यक्ति से। इस संसार का कोई पुरुष हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, इस बात को लिख के रखो, कभी नहीं। ऐसा उसके पास है ही नहीं। एक ही पुरुष है संसार में और वो भगवान है। एक ही व्यक्ति है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है, और कोई नहीं। एक ही व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और किसी पर भी नहीं। सब धोखा देंगे, कभी ना कभी देना ही है, किस पर विश्वास करें? तो पहला वैराग है व्यक्ति, दूसरा वैराग है वस्तु। यहां की जो भी वस्तुएं हैं सब नश्वर है। हम सोच रहे हैं ये वस्तु मेरी है, ये कपड़े मेरे, ये बेडशीट मेरी है, ये पेन मेरा है, ये डायरी मेरी है। आज है, कल नहीं रहेगी। उनके स्वभाव को समझो। आज है, कल नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु हो, परंतु जैसे ही हमें वो मिल जाती है, व्यर्थ हो जाती, हमें फिर कुछ दूसरी वस्तु चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई साधन हो, कुछ भी हो, कार हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, ये सारी की सारी वस्तुएं नश्वर है। बाबा ने मुरलियों में कहा है, देह इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा आंख सहित। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब कुछ नेस्तो नाबूत, सब खत्म हो जाएगा आंख सहित, आंखें भी नहीं रहेगी, कौन सी वस्तु मेरी और कौन सी किसकी। तो दूसरा वैराग है वस्तुओं से। किसी राजमहल में एक राजा सो रहा था और अचानक आधी रात को उसे छत पर आवाज सुनाई देती है कि मेरा ऊंट खो गया है, मेरा ऊंट खो गया है, कहां है। राजा उठता है आधी रात को और छत पे कौन है ये व्यक्ति जो ऊंट को ढूंढ रहा है। सिपाही दौड़ाता है, पकड़ो उस व्यक्ति को जो ऊंट ढूंढ रहा है, कौन वो पागल है जो आधी रात को छत पर चिल्ला रहा है मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट खो गया। जब तक राजा के सिपाही जाते हैं वो व्यक्ति भाग जाता है। कुछ सालों बाद और एक व्यक्ति आता है ऐसे ही राजमहल में, जो कि द्वारपाल के साथ झगड़ा करता है और कहता है कि मुझे इस सराय में रुकना है। द्वारपाल वो प्रतिहारी उसको समझाते, अरे भाई ये द्वार, ये कोई सराय नहीं है, ये राजमहल है। वो कहता है नहीं ये सराय है, मुझे यहां रुकना है। राजा तक आवाज सुन देती है, वो अंदर बुलाते, कहता है क्या है। वो फकीर कहता है मैं इस सराय में रुकना चाहता हूं। वो राजा कहता है अरे मूर्ख ये सराय नहीं है, ये मेरा महल है, ये राज दरबार है। वो कहता है राज दरबार, मैं बहुत सालों पहले यहां आया था जब छोटा था, तब तुम यहां नहीं थे, शायद तुम्हारे दादा यहां बैठते थे। वो कहां है। वो कहते हैं ये देखो उनकी प्रतिमा, हाँ ये थे। फिर जब जवानी में यहां आया था तो उसका बेटा था, और अब आया हूं तो तुम हो, वो सब कहां गए, ये सराय ही तो है। तो राजा को याद आता कुछ साल पहले वो तुम ही थे जो ऊंट ढूंढ रहे थे। वो कहता है हां मैं ही था। अगर इस राजसी महल में तुम्हें शांति मिल सकती है, यहां सुख का अनुभव हो सकता है इन वस्तुओं में, तो क्या ऊंट पर छत पर ऊंट नहीं मिल सकता। तुम असंभव बात कर रहे हो, जो वस्तुएं तुम्हारी है ही नहीं। ये राजसी थाट बाट तुम्हारा है ही नहीं और तुम उसी को सब कुछ समझ बैठे हो और वहीं शांति का अनुभव कर रहे हो। इस संसार की कोई वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दूसरा वस्तु, तीसरा स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, तीसरा आध्यात्मिक मैत्री। हम संसार की मैत्री की बात नहीं कर रहे, इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में मैत्री, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। किसी से विशेष लगाव, किसी से विशेष दोस्ती, इंग्लिश में क्रिश्चियन सेंट्स और क्रिश्चियन किताबों में लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप सूनर और लेटर टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। जो हम सोचते हैं हमारी तो आध्यात्मिक मैत्री है, चाहे पुरुष से चाहे स्त्री से, और विशेष लगाव है, और सोचते हम ज्ञान की ज्यादा लेन देन करते हैं, वो ज्ञान की लेन देन धीरे धीरे कहां से कहां ले जाएगी इसका भी भरोसा नहीं है। इसके लिए सावधान, किससे हम दोस्ती करें, किससे हम शेयर कर रहे, किससे नाराज हो रहे और फिर वो हमें मना रहा है, हम नाराज हो रहे वो हमें मना रहा है, इधर से एक मैसेज उधर से एक मैसेज, इधर से एक व्हाट्सएप उधर से एक व्हाट्सएप, समय एनर्जी पैसा बहुत कुछ जा रहा है। आज की मूल्य में बाबा ने समय के बारे में कहा है, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। कितने संकल्प उत्पन्न हो रहे इस दोस्ती के खातिर, पर दोस्ती नहीं छूट रही है, बहुत सूक्ष्म तल पर यह दोस्ती है। जबकि हमने अपना जीवन एक को दिया है, फिर ये कौन, ये कौन सी मैत्री, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। अगर ऐसी सूक्ष्म फ्रेंडशिप हमारी है किसी के साथ, या होने वाली है, या हो सकती है, या अभी हुई ही नहीं है, परंतु उसका ज्ञान हमारे पास हो कि ऐसी फ्रेंडशिप बहुत खतरनाक है। कहने में, देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु अध्यात्म के अनुभव है भारत भर के, यहां तक कि दिखाया एक संत हुई है राबिया, सुना होगा, सूफी संत हुई है राबिया, प्रथम महिला, ऐसा अद्भुत वैराग। उसके साथ एक उसका दूसरा साथी रहता था हसन। हसन भी कोई साधारण वैरागी नहीं था, तपस्वी था, वैरागी था, परंतु दिखाया है उसके मन में भी एक दिन यह इच्छा जागृत हुई और वो राबिया से कहता है, क्या हम दोनों शादी करें और एक साथ भक्ति करें? तुम भी वही कर रही हो जो मैं कर रहा हूं, तो क्यों ना दोनों साथ साथ रहे। गंधर्व विवाह कहो, डिवाइन मैरिज कहो, या कोई भी शब्द दो, राबिया उसे रोक देती है। अगर देखा जाए तो राबिया से अभी अधिक वैरागी होता है हसन, परंतु राबिया उसे रोकती है, क्योंकि वो जानती है पिटफॉल्स कहां, खड्डे हैं इस मार्ग में। नेक्स्ट, फैशन। सफेद में भी फैशन, सफेद में भी फैशन। रंगों की दुनिया तो छोड़ दी, परंतु सफेद में भी फैशन, उसमें भी एक चाह बनी हुई है। अगर कलर मिल जाए कभी कभी कोई कल्चरल प्रोग्राम में, अतृप्त इच्छा थोड़ी सी पूरी हो जाती है। शायद इच्छाएं बची थी कॉलेज की, वो यहां पूरी करने की का प्रयत्न आत्मा करती है कहीं ना कहीं। बाबा ने तो कहा है इस पढ़ाई का ड्रेस से कोई संबंध नहीं है, परंतु साकार महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हो, ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, बाल खुले हैं, तुम राज ऋषि हो और सेवाएं होती रहेगी। कुछ कहा नहीं है अभी तक, साकार महावाक्य है, ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, बाल खुले हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और सेवा होती रहेगी। साकार मूल्य में आए हुए शब्द है ये। बाबा ने यह ड्रेस कोड दिया है, एक बार इसको धारण करने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, वो रंगों की दुनिया छूट गई तो छूट गई। अगर पहनने भी पड़े, उसमें हमारी जो आसक्ति हो वो ना हो। और व्हाइट में भी फैशन, वो दूसरी माया है एक, क्रीम पाउडर और बहुत सारी चीजें। ब्रह्मा कुमारी का सौंदर्य आत्मा का सौंदर्य है, दिव्य ज्ञान का सौंदर्य है। इस संसार के श्रृंगार हमारे श्रृंगार नहीं है। दादी प्रकाशमणि के जीवन में एक उदाहरण है कि एक माता को दादी ने देखा जो सेवा में आई थी, जिसका पेट दिख रहा था और खुला था। दादी ने उसे बुलाया और कहा कि ये मधुबन है, ये भाइयों की भूमि है, यहां पर ये नहीं चलेगा, माता को कहा था। क्या हम पहन रहे हैं, यहां तक कि रात को क्या हम पहन रहे, उसी रात यदि भूकंप हो जाए और भागना पड़े वहां से, और आग लग जाए, किस वस्त्र में हम हैं? नेक्स्ट कितने हो गए? पांचवा, लौकिक परिवार। पांचवा, लौकिक परिवार, जिस घर को छोड़ दिया, जिन गलियों को छोड़ दिया, जिसे टाटा बाय बाय कर दिया, अब भी मोह नहीं गया है, अब भी वहां की दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है, अगर कभी मिल जाए तो मजा आ जाता है। अब भी बीच बीच में याद बहुत आती है, अगर अब भी फोन नहीं किए तो मजा नहीं आता है। यहां सब कुछ है पर फिर भी वहां थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कभी कभी। अगर वो दाल रोटी अब भी खींच रही है तो वो दाल रोटी एक दिन वही पहुंचा देगी जहां से आए थे। लौकिक परिवार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब वो मम्मी और मां नहीं रही, अब वो माता जी नाम के आगे, जो उसका नाम है उसके आगे माता जी, जैसे बाकी लोग पुकारते हैं उसी तरह हम भी अब वैसे ही पुकारे। अगर ज्ञान में है तो, ज्ञान में नहीं है तो इतना संघर्ष नहीं है। संघर्ष तब है जब सारे ज्ञान में है, मोह तब ज्यादा है जब पूरा का पूरा परिवार ही वैराग्य से परिपूर्ण हो। ये जीवन, ये मोह की रगे, आज के मूर्ति में वरदान सेकंड लाइन, वरदान आज की मूर्ति का, किसी से भी रगे ये सारी जुटी हुई ना हो, निर्बंधन। फिर यहां जब समस्या आ गई तो उन्हीं की याद आएगी, फिर वो याद नहीं आएगा। यहां कुछ हुआ तो वहां की खींच होगी, वहां आश्रय, वहां सारा सहारा, वहां सपोर्ट, वहां अवलंबन नजर आएगा। समर्पित जीवन के तीन नियम हैं, कट द ब्रिजेस, लिख लो इसे, इंग्लिश में शब्द है कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। सबसे पहला है कट द ब्रिजेस, पुल को काट दो। आर्मी में एक नियम है, यदि यहां से उन्हें यहां जाना है और बीच में खाई है तो एक पुल डालते हैं, पुल डालने के बाद उधर पहुंचने के बाद इस पुल को काट देते हैं ताकि वापस भाग के जाने का कोई अवसर और चांस ना हो। मरेंगे या जीतेंगे जो होगा वो देख लेंगे। कट द ब्रिजेस, जिस पुल को बांध कर इधर आए हैं उधर जाने के बाद पुल को काट दिया। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, जिस नैया पर बैठकर इस किनारे आए हो आने के बाद अब उस नैया को डुबो दो ताकि वापस जाने का कोई अवसर ना हो। थ्रो द लैडर, सीढ़ी को फेंक दो, जिस सीढ़ी पर चढ़कर या ऊपर पहुंचे हो अब इस सीढ़ी को फेंक दो। लौकिक परिवार, नेक्स्ट धन, नेक्स्ट वेल्थ, धन। हमने देखा है कि जो सेंटर निर्लोभी है उस सेंटर के चरणों में धन आकर गिरता है स्वतः, और जो सेंटर और वहां की बहनें धन के पीछे है धन उनसे दूर जाता है। लक्ष्मी वहां रहती है जहां नारायण है। जहां नारायण ही नहीं लक्ष्मी नहीं होगी, जहां हृदय में एक बाप बैठा है वहां कोई इस तरह का संघर्ष नहीं, जमीन लेनी है, ये करना है, वो करना है, स्वतः ही होगा। कार्य किसका है? हम अपना कार्य ऐसा ना समझे कि मैं हूं तो ये हो रहा है, तुम नहीं होंगे तो भी वो होगा, शायद तुम ही बाधा हो, शायद तुम ही बाधा हो। हम सोच रहे हैं ये हम इसके इंचार्ज है और हम इसे चला रहे हैं। वो दृश्य याद करो कि हम मर चुके हैं, शैया पर लेटे हुए, अर्थी उठ रही है और हमें ले जाया जा रहा है शमशान घाट। बातें सुनो लोगों की, क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है अच्छा हुआ गया, हम सोच रहे थे हम बहुत सेवा करते थे, हो सकता है हमारे स्थान पर जो आए हमसे 10 गुना अधिक अच्छा योग्य हो, और हम तो यही भ्रम में थे कि मैं ही सेवा कर रहा हूं, ये योग्यता मुझ में ही है। कितने भ्रांति में हम थे, हमसे दूसरा जो आएगा शायद हम ही बाधा थे, हमारी वजह से सेवा नहीं हो रही थी। तो ये जो अहंकार है हमारा कहां रहता है, कहां टिक पाएगा? तो धन स्वतः आएगा, हुंडी भरेगी, सावल शाह की हुंडी है। ब्रह्मा बाबा को जिस जिसने छोड़ के गए बेगरी पाठ में, बाबा ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये उसका कार्य है। फिर भी गए, और जो जो गए लौट कर वापस नहीं आए, फिर झुंड के झुंड चले गए, ग्रुप के ग्रुप मिलने आता था और बाबा से कहते थे बाबा हम जा रहे हैं। किस लिए जा रहे? कमाई करने जा रहे, परंतु माया की नगरी में गए और माया के बन गए, वापस आए ही नहीं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जिस सेवा केंद्र पर पवित्रता शक्ति है, शक्तिशाली है, स्थिति श्रेष्ठ है, वहां स्टूडेंट्स, वहां धन, सेवाएं स्वतः ही होगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए स्थिति और प्यूरिटी और ऐसी निर्लोभी वृत्ति हो। नेक्स्ट पद, पद पोजीशन, हर एक छोटा चाहता है कि इंचार्ज बनूं। 171 की मुरली है जिसमें बाबा ने इंचार्ज शब्द का अर्थ बताया, टीचर से मुलाकात, 3 अर्थ बताए इंचार्ज, चार्ज अर्थात जिसकी आत्मा चार्ज हुई है वही इंचार्ज है, बाकी नहीं। दूसरा, जिसको चार्ज दिया गया है, मतलब ड्यूटी दी गई है, मतलब सेवा दी गई है, अर्थात जो सेवा कर रही है वो चार्ज। अगर ये तीनों ही चीजें नहीं होगी तो चार्ज लगेगा, अर्थात दोष। चार्ज लगता है ना किसी पर, तो धर्मराज का चार्ज लगेगा। पद की कामना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहां मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, यहां बड़ा कौन है? इस यज्ञ में बड़ा वही है जिसकी स्थिति बड़ी है, इस यज्ञ में आगे वही है जिसकी स्थिति आगे है। चाहे सब कुछ है परंतु यदि स्थिति नहीं है तो हम कहीं पर भी नहीं है। स्थिति तो पद, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में माताएं और कुमार और भाई। यदि हमारा आज जिस सेवा केंद्र में हम हैं, या जहां हम सेवा और यहां के स्टूडेंट्स में हमारी बुद्धि है, या उसके मोह में हम फंसे हुए हैं, तो एक दिन धोखा होगा। कौन कब विरोधी बन जाए बता नहीं सकते। हमने ऐसे ऐसे सेवा केंद्रों की कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने जिन माताओं की इतनी पालना की, इतनी पालना की बचपन से लेकर, तो बाबा से मिलाने से लेकर सब कुछ जिन माताओं के लिए किया, वही माताओं ने एक दिन विद्रोह किया। जिन कुमारियों कुमारों की पालना की, वही कुमार एक दिन विरोध में खड़े हो गए। वही जाकर कंप्लेंट करने लगे। इसके लिए सावधान, सेवा करनी है, पालना करनी है, परंतु बीच में क्या हो, झील, वो उधर हम इधर। चाहे माता हो सबकी पालना करो, चाहे भाई हो कुमार हो कोई भी हो, पालना करनी है, प्रेम देना है, परंतु डिटैच्ड लव। हमारा प्रेम कैसा हो, डिटैच्ड लव, वो उधर हम इधर। नहीं तो एक दिन जब धोखा मिलेगा तब डिटैच लव होगा, वो समय शिक्षक बनेगा। फिर आज की मुरली में है, तुम मास्टर रचता हो, तुम्हारा शिक्षक कौन है, बाप है या समय है? कितने हुए, 8, 9। स्वाद, स्वाद, टेस्ट, फ्लेवर, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात स्वाद से परे अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। जो यहां स्वराज्य अधिकारी है वो वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात सारा जीवन किचन में बिताना तो नहीं है ना? इसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी विशेषताएं। मैं भाषण बहुत अच्छा करती हूं, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मैं भोजन बहुत अच्छा बनाती हूं, एक बार टेस्ट तो करके देखो। ये सेवा मैं बहुत अच्छी कर सकती हूं, मैं कोर्स अच्छा कराती हूं, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं बहुत विनम्र हूं। कैसा अभिमान है ये, अगर कोई हमसे कहे कि आप बहुत विनम्र हो, आप बहुत ही हम्बल हो, बिल्कुल अभिमान नहीं है आप में, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और फिर अगर कोई दूसरा आके हमसे एक दिन ये कह दे कि तुमसे ज्यादा वो दूसरा विनम्र है, तो हलचल, कैसी विनम्रता थी ये। अपनी विशेषताओं का अभिमान, किसने भरी है ये विशेषता है, अगर वो चाहे तो हटा भी सकता है। इतना अभिमान नहीं करो, किस बात की अकड़, अगर वो चाहे, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, सूफी गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। सूफी संत लिखता है कि तेरे पास तो बिजलियां है, कब तेरी बिजली आकर गिर जाएगी और कब मेरा ये भवन नष्ट हो जाएगा, इसका क्या भरोसा, तेरे पास बिजलियां है मेरे पास आशियाना, इसलिए राजी तेरी रजा में। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, धाय विल शाल बिडन, जो तेरी इच्छा है उसने जहां रखा है उसकी मर्जी। हम कौन है, किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार। उसके बने तब तो उसने विशेषताओं को ऐसा निखारा है, दिव्य बनाया है, नहीं तो हमसे अच्छे लोग तो दुनिया में भी है, हमसे अधिक खूबियां और विशेषताएं उनमें है, परंतु हमारी विशेषताएं विशेष है क्योंकि उसके कार्य में हमने अपने आप को लगाया है। नेक्स्ट, gifts. Next, saugat, upahar. बहुत सारे मिलते रहते हैं और मिलेंगे, परंतु हमारी उनमें कहीं आसक्ति ना हो। जो आ रहा है और जा रहा है सब कुछ सेवा के लिए, सब कुछ यज्ञ का है, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। आज इस सेवा केंद्र में है, कल किसी और सेवा केंद्र में होऊंगा। आज यहां तो कल यहां। हम तो सन्यासीन हैं, वैरागी है, बैरागी है। जहां उसने रखा उसकी मर्जी है, आज यहां रखेगा, कल यहां से उठा के कहीं और रख दे। हम ये क्यों कहे कि हमें यहीं रहना है और हमें वहीं रहना है, हमारे लिए ये स्थान अच्छा है या वो स्थान, ये कौन निर्णय करेगा, कौन निर्धारण करेगा इसका, हम या वो करेगा। इसके लिए गिफ्ट्स बहुत कुछ मिलेगा इस जीवन में, परंतु हमारी आंख कहीं नहीं डूबे, हमारी आंख कहीं नहीं डूबे। किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, फिर उससे दोबारा ये ना कहे कि ये हमें फिर दो, यहां वो बहुत अच्छी चीज है, हमें बार बार भेजो। हम क्यों कहे, वो भेजे तो भेजने दो, पर हम अपने मुख से ना कहे, ये भी तो आ सकती है। वहां वो फला फला फल बहुत अच्छा है, फला फला चीज अच्छी है, कोई वस्तु अच्छी है, इन वस्तुओं में क्या है, है भी और नहीं भी। तो गिफ्ट्स कितने हुए, अंतिम 12वां। लिस्ट तो हम शाम तक भी सुना सकते हैं, परंतु क्लास को पूरा करना है, इसके लिए अंतिम अंतिम है पुरानापन, ओल्डनेस। हमें हमारे सेवा केंद्र में हर दिन कुछ ना कुछ नवीनता लानी है, हर दिन कुछ ना कुछ नवीनता, चाहे ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, सेवाओं में नवीनता, धारणाओं में नवीनता। हम अभी एक जगह गए थे तो वहां पर एक भाई था, उसने ऐसा एक अनुभव सुनाया, समर्पित भाई है, बहुत सालों से सेवाएं कर रहा है। एक बार बहन जी ने उससे कह दिया किसी भाई का कोर्स कराओ, आज तक कहा नहीं था उसको, पहली बार उसने कोर्स कराया, इतना अच्छा लगा उसने हमको बताया, क्या बताऊं, पहली बार इतना अच्छा मुझे लगा कि बहन जी ने मुझे कहा कि किसी का कोर्स कराओ। तो अपनी सेवा केंद्र में, अपने जीवन में हमें क्या करना है, नवीनता लानी है, हर चीज में नवीनता, योग में, ज्ञान में, तपस्या में। हम अगर नवीनता लाएंगे तो सब में नवीनता आएगी, हम जैसे होंगे सारे स्टूडेंट्स भी हमारे वैसे ही होंगे। तो ये वैराग की 12 बातें फिर से अपने मन में रिवाइज करेंगे। यदि कुछ गलती हुई है तो बड़ी बहने छोटा भाई समझकर और छोटी बहने थोड़ा छोटा बड़ा भाई समझकर हमें माफ कर दे। ओम शांति।
मैंने पाया।
बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, मधुबन
जानवे 83 जिसकी भी गाड़ी हटा लो।